आविर्भाव हैं और जो एक आचार्य हैं जिनका स्थिरोभाव है। तो आज स्थिरोभाव था श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। स्थिरोभाव का मतलब है कि उन्होंने आज के दिन अपना जो शरीर है उसको छोड़ा था और भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। और आविर्भाव का मतलब होता है कि आज के दिन जो ये महान वैष्णव हैं या भक्त हैं उन्होंने इस जगत में जन्म लिया था या अपना प्राकट्य किया था। तो जैसे कि जो भक्त सुबह होंगे तो उन्होंने सुना होगा श्रीमद् भागवतम क्लास में आज जितामित प्रभु के द्वारा। तो जितामित प्रभु ने आज विशेष रूप से विष्णुप्रिया ठाकुरानी के बारे में सुनाया था और पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में और सरस्वती पूजा के बारे में। तो जैसे कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में कहते हैं या श्रील कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहा हो लेकिन जो लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की जिन लीलाओं का वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में नहीं किया है तो उन लीलाओं को ही मैं अपने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में विस्तार रूप से बताऊंगा। और जो लीलाओं जिन लीलाओं का वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने उनमें किया है चैतन्य भागवत में तो मैं उनको सूत्र रूप में बताऊंगा। तो उसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि जितामित प्रभु ने सुबह जिन वैष्णव आचार्य उनके बारे में बताया है उनको हम दोहराएंगे नहीं और जो भी वैष्णव आचार्य जिनका प्रभु जी ने सुबह सूत्र रूप में वर्णन किया था श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रील रघुनंदन दास ठाकुर तो उनको हम विशेष रूप से उनके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है कि भगवान अपनी जो लीलाएं करते हैं वो स्वीट हैं। कृष्ण के जो एक्टिविटीज हैं उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं वो बहुत मधुर हैं तो लेकिन उनसे भी अधिक जो मधुर कार्यकलाप उनके भक्तों के होते हैं क्योंकि भगवान कभी अपनी अकेली कोई लीला या अकेला कोई कार्य नहीं कर सकते या कोई लीला वो संपादन नहीं कर सकते बिना भक्तों के। ऐसी कोई लीला नहीं है कि जिसमें कृष्ण अकेले कुछ कर रहे हैं। हर समय वो या तो श्रीमती राधा रानी या अपने ग्वाल सखाज या गोपियों के साथ दिव्य लीलाओं में रमन करते हैं तो उसी से हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो कार्यकलाप है वो सुनने के लिए बहुत अधिक मधुर है। रत कर्ण रसायन कथा शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की जो दिव्य गाथा है वो कानों को बहुत आनंद देती है और जो भक्तगण है भगवान के बारे में सुनकर आनंद का अनुभव करते हैं और उनका आनंद बढ़ता ही जाता है। भौतिक जगत में आप किसी फिल्म स्टार क्रिकेट स्टार या पॉलिटिशियन जो नेता हैं उनके बारे में हम सुनते हैं पढ़ते हैं टेलीविजन में देखते हैं तो बहुत ही अधिक बोर हो जाते हैं हम। कोई रस नहीं है उसमें नीरस कार्यकलाप है लेकिन यदि हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं या श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते हैं तो वो अधिक हमें आनंद अनुभव होता है क्योंकि भगवान के कार्यकलाप दिव्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आनंदाम बुद्धि वर्धनम कि जितना अधिक सुनते हैं हमारा आनंद बढ़ता ही जाता है। भौतिक कार्यकलाप जितना सुनते हैं आनंद कम हो जाता है। तो इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि हमें भगवान के साथ साथ भगवान के जो भक्त हैं उनके जीवन का जो चरित्र है उसको सुनना चाहिए क्योंकि इससे सुनने से हमारे अंदर दो गुणों की वृद्धि होती है। एक है डिटर्मिनेशन उन भक्तों के चरित्र को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये गुण हमारे हृदय में विकसित हो जाता है वो है डिटर्मिनेशन दृढ़ता हाँ, हम देखते हैं कि इन वैष्णवों का ये कार्यकलाप है, भगवान की सेवा में इस प्रकार से वो लगे हैं, तो हमारे हृदय में भी उसी प्रकार की जो उत्कंठा जागृत होती है या फिर दृढ़ता आती है कृष्ण भावना में। और दूसरा गुण हम विकसित करते हैं वो है इगरनेस, लवल्यम, जिसको श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना की जड़ है, कृष्ण भावना की रूट क्या है या कृष्ण भक्ति की जो जड़ है वो है लवल्य, इगरनेस, लालसा, भगवान को प्राप्त करने की लालसा। क्योंकि भगवान को तभी हम प्राप्त कर पाएंगे या भगवान की ओर या कृष्ण की ओर तभी अग्रसर हो पाएंगे जब हमारे हृदय में वो लालसा हो, वो उत्कंठा हो। और ये आती कैसे है, हम या तो भगवान के भक्तों के एसोसिएशन से और उनके बारे में उनके चरित्र या उनके गुण की जो गाथा है उनको हम चर्चा करते हैं या उनके बारे में सुनते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं। इवन यहाँ इतनी मधुर कार्यकलाप है भगवान के भक्तों के कि स्वयं कृष्ण भी भक्त बन जाते हैं और अपने भक्तों के बारे में सुनते हैं। हाँ, चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि जैसे ही रथ यात्रा खत्म होती थी जगन्नाथ जी की, तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे ही दिन सारे बंगाल के वैष्णवों को बुलाते थे अपने पास, और जो भी आता था तो बंगाल वापस जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलते थे और फिर एक एक भक्त का गुणगान करते थे। कहते थे, स्वरूप दामोदर तुम जानते हो, हाँ, ये राघव पंडित कौन है, हाँ, तो फिर महाप्रभु उनका गुणगान करने लगते थे। फिर कहते थे, रामानंद राय तुम जानते हो शिवानंद सेन कौन है। तो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों का गुणगान करते थे तो उनके पांच मुख हो जाते थे, पांच मुख, मतलब इतना अधिक आनंद का अनुभव करते थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान के जो भक्त हैं उनको गुणों के बारे में बोलने में या उनके बारे में सुनने में। वर्णन आता है कि जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु रहे तो रोज अपने गंभीरा में रहते थे और टोटा गोपीनाथ में चले जाते थे, टोटा गोपीनाथ टेम्पल, जहां गदाधर पंडित रहते थे। तो गदाधर पंडित के पास जाकर चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को सुनते थे, और क्या सुनते थे, प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते थे कि किस प्रकार कृष्ण भक्तवत्सल है, भक्तवत्सल है। प्रहलाद के बारे में उनकी चरित्र कथा सुनते थे, कभी ध्रुव चरित्र सुनते थे। तो इससे क्या समझते हैं कि हमें ये बहुत अधिक आवश्यक है कि हमें कृष्ण भावना में तीव्रता लानी है, क्योंकि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुष परम, कि चाहे हमारे अंदर भौतिक कामना हो या हम अकाम हो, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि, चाहे हमारे पास हृदय में कोई कामना नहीं है भौतिक, या तो हृदय बहुत भौतिक कामनाओं से भरा है, लेकिन श्रीमद् भागवतम कहता है कि तीव्रेन भक्ति योगेन, कि आपने आपको तीव्रता से लगे रहो कृष्ण भावना में, फिर क्या हो जाएगा, नेचुरली उस तीव्रता से हमारी जो प्रीति है कृष्ण के कृष्ण में लग जाएगी, क्योंकि कृष्ण प्रेम के विषय है। चैतन्य चरितामृत कहता है, प्रेमे कृष्ण वश है प्रेमे तार भजी, कि कृष्ण तो प्रेम से वश में होते हैं और उसीलिए लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद कहते हैं कि प्रेम से उनकी सेवा में लगो। तो ये जो सेवा की जो भावना है वो आएगी कैसे, जब हम सुनेंगे भगवान के भक्तों के दिव्य कार्यकलापों को। तो चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत ये भरा पड़ा है, ये जो दो ग्रंथ हैं, भगवान श्री चैतन्य के जो संगी हैं, उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके जीवन गाथा के बारे में। तो आज जो चार वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव है और एक वैष्णव आचार्य का तिरोभाव, तो जितामित प्रभु ने सुबह की अपनी भागवतम क्लास में कई आचार्यों का वर्णन किया था और दो आचार्यों का चरित्र उन्होंने सूत्र रूप में दिया था, सूत्र रूप में, तो हम उसका प्रयास करेंगे कि थोड़ा उसका विस्तार करेंगे। तो एक आचार्य थे श्रील रघुनंदन दास ठाकुर, और दूसरे थे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी उनसे एक है। तो हम रघुनंदन दास ठाकुर के बारे में सुनेंगे, जिनका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु के एक संगीत है जिनका नाम था शिवानंद सेन। तो उनके पुत्र थे, 3 पुत्र थे शायद, 2 या 3, उनमें से एक पुत्र थे जिनका नाम था पुरी दास। चैतन्य महाप्रभु ने उनके, वो जब छोटे से बालक थे तो एक दिन मिलने गए तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पाँव का अंगूठा उनके मुख में डाला था और वो चूसने लगा महाप्रभु का जो अंगूठा है, और तब से उन्होंने उनके मुख से भगवत भगवान की जो प्रशंसा है, भगवान के जो गुण है, उनका वर्णन उनसे मुख से निकलने लगा। बचपन में उन्होंने कई काव्य लिखे, तो आगे चलकर उनका नाम पड़ा कवि कर्णपुर। कवि कर्णपुर कि उनके जो कार्य है या उनका जो भगवत गुणगान है वो कानों को बहुत आनंद प्रदान करता है। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था गौर गणोदेश दीपिका, जिसमें श्री रघुनंदन ठाकुर को, ठाकुर के बारे में वो वर्णन करते हैं कि कृष्ण लीला में वो स्वयं प्रद्युम्न है, हाँ, या कामदेव जो प्रद्युम्न के रूप में अपीयर हुए थे। तो रघुनंदन दास ठाकुर 1510 में प्रकट हुए थे और ये इनको कहा जाता है खंडवासी, बंगाल में, ये बांग्लादेश में स्थान आता है खंडवासी। तो इनके पिता का नाम था मुकुंद दास। इनके परिवार की खासियत क्या थी कि पूरा परिवार श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा हुआ था, या पूरा परिवार कृष्ण भावना भावित था। तो जो मुकुंद दास है, इनके पिता रघुनंदन दास ठाकुर के, तो वो डॉक्टर थे अपने व्यवसाय से, और वो भी बहुत अधिक महान भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु के, और हर समय अपने कार्यों के साथ साथ भगवान के दिव्य प्रेम में वो लीन होते रहते थे, या कृष्ण के स्मरण में हमेशा लगे रहते थे। तो उनके ये पुत्र थे रघुनंदन ठाकुर, और चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है विशेष रूप से। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नर हरि मुख्य तीन जान, के खंड ग्राम या खंडवासी मुकुंद दास थे, श्री रघुनंदन थे और मुरारी श्री नराहरि थे। तो नराहरि बड़े भाई थे और मुकुंद दास छोटे थे, और मुकुंद दास के पुत्र थे ये नराहरि ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहने लगे, जब उन्होंने संन्यास लिया अपनी 24 साल की आयु में, नवदीप से उन्होंने अपनी युवा पत्नी और सची माता जो ओल्ड उनकी माँ थी उनको त्याग कर वो जगन्नाथपुरी चले गए और वहां निवास करने लगे। तो जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु रहते थे तो सारे बंगाल और ओरिसा से अधिक भक्त जगन्नाथपुरी जाते थे हर साल चैतन्य महाप्रभु को मिलने, और स्पेशली जगन्नाथ रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को बुलाते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने रूम में बैठे थे गंभीरा में, तो उस समय भक्त आते थे मिलने और चले जाते थे, क्योंकि भक्तों की बाढ़ आती थी। कृष्णदास कविराज कहते एक दो भक्त नहीं आते थे, ओरिसा से बंगाल से बाढ़ आ जाती थी भक्तों की चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, या चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन और कथा का आनंद प्राप्त करने के लिए। तो एक दिन ऐसे ही ये खंडवासी मुकुंद आए थे अपने छोटे से पुत्र के साथ, उनके पुत्र का नाम था रघुनंदन। तो उनके साथ आए तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, तो इसका वर्णन मध्य लीला में आता है। कृष्णदास कविराज कहते हैं, मुकुंद दास पूछे शचिर नंदन तुम्हें पिता पुत्र तो मार श्री रघुनंदन। तो कहते कि हे मुकुंद, अभी पिता और पुत्र लॉर्ड चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं, और कहते हैं कि हे मुकुंद, चैतन्य महाप्रभु पूछते कि मुकुंद तुम पिता हो और ये रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है क्या? तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से पूछते हैं कि बा रघुनंदन पिता तुम्हें तारतनाय, क्या रघुनंदन तुम्हारा पिता है और तुम उसके बच्चे हो या तुम उसके पुत्र हो क्या? महाप्रभु उल्टा पूछ रहे हैं। निश्चय करिया कह जाओ का संशय, कहते कि मुझे बड़ा संशय हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पुत्र के पिता हो, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा पिता है। तो कहते थोड़ा क्लियर करो, मुझे संशय है, डाउट है। क्योंकि महाप्रभु ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, नहीं तो ये उचित नहीं है मेरे लिए। तो मेरे जो संशय है, जो संशय होते हैं, डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर नहीं करेंगे तो उसका विनाश हो जाता है। तो कहते मुझसे इससे बचाओ और बताओ कि क्या है। ये संशय कोई छोटा मोटा नहीं है, मेरा डाउट ये बहुत बड़ा है। बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से प्रश्न पूछकर ये सिखाना चाहते थे कि कौन गुरु है, गुरु कौन है। तो मुकुंद कहते हैं, मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है, आमे तार पुत्र यही अमार निश्चय। कि कहते हैं कि हे प्रभु, रघुनंदन तो मेरे पिता है और मैं तो उनका उसका पुत्र हूं, और ये मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके बोल रहा हूं, बिना संशय के बोल रहा हूं। आमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन है ते, अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चिते। क्योंकि ये मेरा पुत्र मेरा पिता क्यों है? क्योंकि आमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन है ते, कि हम सब भक्ति में या कृष्ण की भक्ति हमें मिली है वो किसके कारण मिली है? रघुनंदन के कारण। इसलिए ये जो रघुनंदन है मेरा पुत्र है, बल्कि वो मेरा पुत्र नहीं है, वो मेरा पिता है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। सुनि हर्षे कहे प्रभु कहे लेनि छाय, जहां है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। कि जिसमें कृष्ण भक्ति है वो गुरु है। चैतन्य महाप्रभु और एक स्थान में कहते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कि कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण और आश्रम में क्यों ना हो, लेकिन जो कृष्ण वेत्ता है या कृष्ण के तत्व को जानता है, कृष्ण भक्ति के साइंस को, विज्ञान को जानता है, तो वह गुरु बन सकता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये इस रघुनंदन के इस लीला से शिक्षा देते हैं कि वास्तव में गुरु कौन है। जो कृष्ण भावना से ओतप्रत हो, जो कृष्ण भावना प्रदान कर सकता है, वो आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। तो इस प्रकार से रघुनंदन ये बहुत ही चैतन्य महाप्रभु के एक प्रिय संगीत है। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन की टोलियां अरेंज करते थे, तो अलग अलग ग्रुप होते थे, 7 ग्रुप बनाते थे। उनमें से एक ग्रुप इनका होता था, नरहरि और रघुनंदन का। जो नरहरि या मुकुंददास खंडवासी जो भक्त थे, उनका एक ग्रुप होता था। और इस ग्रुप में 2 डांसर होते थे, एक थे नरहरि जो मुकुंददास के बड़े भाई थे, और दूसरे थे रघुनंदन। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्रिय संगियों में से एक ये जो रघुनंदन है, और इनका वर्णन और कई ग्रंथों में आता है। तो एक महान एक वैष्णव हुए हैं उद्धव दास, उन्होंने एक गीत लिखा था, उस गीत में रघुनंदन की एक विशेष लीला का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि ये जो मुकुंद दास है, इनके घर में एक डेटी होती थी गोपीनाथ, एक विग्रह होते थे उनके घर में गोपीनाथ। तो मुकुंद दास अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चे पत्नी सबके साथ गोपीनाथ की सेवा करते थे। तो अचानक मुकुंद को किसी कार्य के लिए जाना पड़ा मुकुंद दास को, तो उन्होंने कहा कि हे रघुनंदन, तुम जरा गोपीनाथ को आज भोग ऑफर करो, भोग अर्पण करो। तो रघुनंदन क्या करते कि मुझे तो आता नहीं है, तो कहते जस्ट प्लेट ले लो और गोपीनाथ के सामने रखो और उनको कहो कि इसको स्वीकार करिए। तो इन्होंने केवल वैसे ही किया, यथारूप आदेश का पालन किया। उन्होंने अपनी माँ से जो भी घर में किचन में जो भी पकाया था वो लिया, और डीटीज के लिए गोपीनाथ के लिए ले गए अपने घर में। गोपीनाथ के सामने रखा और वो बोलने लगे कि गोपीनाथ इसको खाओ, इसको स्वीकार करो। तो लेकिन देखा कि गोपीनाथ खा ही नहीं रहा है, तो कहते आप मेरे ठाकुर नहीं हो, मुझे लगता है कि आप मेरे पापा के ठाकुर हो। गोपीनाथ को कहते हैं कि ऐसे लगता आप मेरे ठाकुर नहीं हो, आप तो मेरे पिता के ठाकुर हो, इसलिए आप मुझसे नहीं खाते हो, रोज उनसे ही खाते हो। तो जो नराहरि है ये रघुनंदन है वो रोने लगे, क्योंकि आप मुझसे नहीं स्वीकार कर रहे हो भोगा, तो रोने लगे रघुनंदन। और रघुनंदन रोते क्योंकि कृष्ण वश में हो जाते हैं, तो भक्ति के द्वारा स्वीकार करते हैं चीज को। तो देखा कि इतना छोटा सा बालक इतना व्याकुलता से और बड़े तीव्रता से मुझे ये भोगा ऑफर करना चाह रहा है, तो कृष्ण ने तुरंत गोपीनाथ मैनिफेस्ट हो गए, प्रकट हो गए अपने ब्रजेंद्र नंदन के रूप में, राधा परसरती की। तो उस समय रघुनंदन ने जैसे ऑफर किया तो गोपीनाथ ने वो सारी चीजें स्वीकार की। और उसके बाद मुकुंददास आते हैं और कहते हैं कि हे रघुनंदन महाप्रसाद कहाँ है। तो देखा कि महाप्रसाद तो है ही नहीं, तो कहते कि पिताश्री गोपीनाथ ने सारी चीजें खा ली हैं और अभी कुछ बचा नहीं है। तो उस समय कहते कि आप झूठ बोल रहे हो। तो मुकुंददास कहते कि ठीक है। तो मुकुंददास ने कुछ लड्डूज लाए थे, लड्डूज एक प्लेट में रखे और कहा कि मुकुंद रघुनंदन जाओ अभी वो ऑफर करो मेरे सामने। तो रघुनंदन बड़े सरल थे, हाँ मतलब आप जाओ ऑफर करो मैं देखता हूं, देखता नहीं हूं। तो उन्होंने क्या किया, रघुनंदन चले गए और डीटी गोपीनाथ के सामने पुनः उनको रखा लड्डूज को। तो उस समय मुकुंददास छिपके देख रहे थे कि ये मुकुंद क्या कर रहे हैं, ये जो नरहरि रघुनंदन क्या कर रहे हैं। तो देखा कि गोपीनाथ पुनः जो लड्डू से खाते हैं और एक आखिरी लड्डू बचा था जो गोपीनाथ ने आधा खाया। तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि गोपीनाथ ने मुकुंददास के सामने भी सारे लड्डू खाए और थोड़ा सा लड्डू बचाया और आज भी गोपीनाथ के हाथ में वो लड्डू है। तो कहते कि सारे गौड़िया वैष्णव अब वहां चले जाते हैं खंडग्राम उस स्थान में जहां इनके गोपीनाथ आज भी हैं। तो गोपीनाथ के हाथ में आज भी लड्डू हैं, तो जब उन्होंने उनसे ग्रहण किया था। तो इस प्रकार से वो लड्डू नहीं होगा लेकिन उस प्रकार से डीटीस के हाथ में लड्डू हैं गोपीनाथ के हाथ में। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से रघुनंदन से जो गोपीनाथ है विशेष प्रेम का जो आदान प्रदान करते हैं, कितने प्रिय होंगे रघुनंदन गोपीनाथ को। तो इस प्रकार से कई लीलाएं आती हैं रघुनंदन ठाकुर के बारे में कि रघुनंदन ठाकुर को मिलने के लिए एक चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के संगी आए थे अभिराम ठाकुर। तो जब आए मिलने तो रघुनंदन बहुत खुश हो जाते हैं और उनका आलिंगन करते हैं अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर जो द्वादश गोपाल में से एक है नित्यानंद प्रभु के संगी। तो ये जब मिलने आए तो नरहरि जो रघुनंदन है इनको बहुत आनंद हुआ और गले में मिले, फिर दोनों मिलकर नाचने लगे, रोने लगे, कीर्तन करने लगे। तो रघुनंदन के पांव में नुपुर होते थे, तो उस समय नाचते नाचते उनका जो नुपुर है वो गिर गया, मतलब उड़ गया। तो ऐसा वर्णन आता है कि वो नुपुर इतनी दूर चला गया कि उनके एक शिष्य थे कृष्णदास, उनके घर के सामने गिरा। तो जब कृष्णदास बाहर आए तो उन्होंने देखा ये तो मेरे आध्यात्मिक गुरु के चरणों के जो नुपुर है वो है। तो आगे चलकर वहां नुपुर कुंड बनाया गया। तो आज भी डिवोटीज जाते हैं और उस नुपुर कुंड में जाके स्नान करते हैं या आचमन करते हैं और इनकी लीलाओं को याद करते हैं। तो इस प्रकार से पता नहीं कितने किलोमीटर होगा। तो इस प्रकार से रघुनंदन ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत विशेष संगी हैं और बहुत ही अधिक प्रिय हैं। और इनका विशेष लगाव जो राधा गोपीनाथ की सेवा में था। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में इनसे मिल रहे थे तो उनके पिता श्री को कहा कि हे मुकुंद, फिर इन्होंने क्या किया, एक ही परिवार में ये तीन डिवोटीज हैं, एक है मुकुंददास, एक है नरहरि और दूसरे है रघुनंदन। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन तीनों को अलग अलग सेवाएं दे दी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुकुंदेर कहे पुना मधुर वचन, तोमार कार्य धर्मे धन उपार्जन। कि हे मुकुंद, आप तो डॉक्टर हो तो आप क्या करो, फंड रेजिंग करो। जैसे इस्कॉन में अलग अलग भक्तों के अलग अलग सेवा होती है, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ सिस्टम है। प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत को लागू किया है अपनी संस्था में। तो मुकुंददास को कहा कि आप मेंबरशिप करो, धन कलेक्ट करो, फंड रेजिंग करो चलाने के लिए मंदिर। और फिर दूसरे रघुनंदन को क्या कहा, रघुनंदन कार्य कृष्ण सेवान, कृष्ण सेवा बिना यहार अन्य नाही मान। कहते कि रघुनंदन का मन कृष्ण की सेवा के अलावा किसी और चीज में नहीं लगता है, गोपीनाथ की सेवा के अलावा किसी और चीज में नहीं लगता है उनका मन। इसलिए रघुनंदन, तुम हर समय कृष्ण की सेवा करो, गोपीनाथ की सेवा करो। और आपके जो पिता है मुकुंददास है, वो क्या करेंगे, उसको मेंटेन करने के लिए फंड रेजिंग करेंगे, धन लाएंगे, धन उपार्जन करेंगे। और फिर तीसरे थे नरहरि। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नरहरि बहु अमार भक्त गण संगे, यही तीन कार्य सदा कर निज जने। कहते कि नरहरि, तुम मेरे साथ ही रहो जगन्नाथपुरी में। क्यों? क्योंकि मुझे मिलने के लिए तो बहुत सारे भक्त आते हैं और मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाता। तो आप क्या करो, भक्तों की टेक केयर करो, भक्तों की देखभाल करो। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन तीनों को अलग अलग सेवा में नियुक्त किया और उनसे अलग अलग प्रकार की सेवाएं स्वीकार की। तो प्रभुपाद उस इन श्लोकों के तात्पर्य में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इन तीन भक्तों की अलग अलग सेवाएं निर्धारित की थी, मुकुंद को धन अर्जन करना, नरहरि को भक्तों की देखभाल करना, रघुनंदन को मंदिर ड्यूटी वार्शिप संभालना। तो इस प्रकार से कहते हैं प्रभुपाद कि यदि हम अलग अलग सेवाओं में लगे रहेंगे लेकिन सेंटर हम चैतन्य महाप्रभु को रखेंगे, तो हम बहुत तीव्रता से कृष्ण की ओर आगे बढ़ेंगे कि सेंटर चैतन्य महाप्रभु को रखें। तो इस प्रकार से रघुनंदन महाप्रभु के प्रिय भक्त थे। और ऐसा वर्णन आता है कि एक बार इन्होंने खेतुरी ग्राम में जो पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है वो भी अटेंड किया था नरोत्तम दास ठाकुर के समय। और इन्होंने जब अपना देह त्याग किया तो उस समय उन्होंने बहुत अपने सारे भक्तों के साथ वो कीर्तन कर रहे थे। और उस समय उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य कहते हुए अपना जो शरीर है उन्होंने त्यागा था। तो आज विशेष दिन है, आज उनका आविर्भाव है नरहरि रघुनंदन ठाकुर का, कि हमें उनके बारे में सुनना चाहिए या उनका स्मरण करना चाहिए और उनके जो दिव्य कार्यकलाप है उन पर मेडिटेट करना चाहिए और उनसे हमें सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि भक्तों के दिव्य कार्यकलापों को सुनते हैं तो हम प्रेरित हो जाते हैं। जैसे कई बार हम अनुभव करते हैं कि कृष्ण भावना में हम डल हो जाते हैं कभी कभी, तो हमें लगता है लेकिन जैसे हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना शुरू करते हैं पुनः हमारे अंदर वही जोश आ जाता है कृष्ण भावना में लगे रहने का। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों के बारे में सुने या उनके दिव्य गुणों की चर्चा करें। श्री रघुनंदन ठाकुर के तो अगले जो आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, जो छह गोस्वामियों में से एक गोस्वामी हैं जिनका आज आविर्भाव है, अरे विशेष वैष्णव आचार्य हैं हमारी परंपरा में, जिनको वैराग्य शिरोमणि है, जिनको वैराग्य शिरोमणि भी कहा जाता है। चैतन्य भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, आप सुनेंगे आगे। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपने अलग अलग भक्तों को चुना और उनके द्वारा अलग अलग शिक्षा प्रदान की। जैसे रूप गोस्वामी के द्वारा विशेष रस रसों का वर्णन किया, और सनातन गोस्वामी के द्वारा वैष्णव आचरण की शिक्षा प्रदान की, और हरिदास ठाकुर के द्वारा उन्होंने नाम की महिमा का जो शिक्षा है वो प्रदान की। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग जो कार्य है वो सारे विश्व को सिखाए हैं। तो उनमें से एक रघुनाथ दास गोस्वामी थे जिनके बारे में हम सुनेंगे, और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बहुत अधिक हमें इन दो ग्रंथों में उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। तो वर्णन आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल में सप्तग्राम में प्रकट हुए थे 1494 में, जो हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है, और उनके पिता का नाम था गोवर्धन मुजुमदार, और गोवर्धन मुजुमदार के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था हिरण्य मुजुमदार। तो ये लैंड लॉर्ड या जमींदार के पुत्र थे, और अकेले पुत्र थे रघुनाथ दास, और अमाप इतना धन संपदा उनके पास था। इसलिए श्रीनिवास आचार्य जब गोस्वामियों के बारे में कहते हैं तो कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। कहते कि ये जो छह गोस्वामी है, ऐसे नहीं कि उनको कुछ मिल नहीं रहा था घर में, उन्होंने कहा चलो अभी वैरागी बन जाते हैं, संन्यास लेते हैं, बाबा जी बनते हैं, नहीं। कहते हैं त्यक्त्वाम तूर्णम अशेष मंडलपति, वो मंडलपति थे, कोई प्राइम मिनिस्टर था, कोई वित्त मंत्री था, कोई जमींदार का पुत्र था। तो इस प्रकार से सारे छह गोस्वामी थे, मंडलपति थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, त्यक्त्वा तूर्णम, त्याग दिया। कैसे, जिस प्रकार के घास के तिनके को त्यागते हम लोग, कभी सोचते घास के तिनके के बारे में जब चलते हैं, कोई वैल्यू नहीं है घास के तिनके का। तो कहते इसी प्रकार से उन्होंने सारे जो ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य जिसके लिए सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस सारे ऐश्वर्य को त्याग दिया, जो मंडलपति थे। तो इस प्रकार से उनके बचपन में काफी वर्णन आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को बचपन से कोई आकर्षण नहीं था भौतिक जीवन के प्रति, और हर समय वो श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर भागते थे। क्योंकि जब हरिदास ठाकुर चांदपुर नाम के गांव में निवास करने लगे हैं, उस वेश्या को उन्होंने दीक्षा देने के बाद या भक्त बनाने के बाद, तो इनके घर के पास ही था चांदपुर। तो ये जब स्कूल में पढ़ते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो रेगुलर मिलने जाते थे, किसको, हरिदास ठाकुर को मिलने जाते थे। और मध्य लीला में वर्णन आता है तीसरे अध्याय में कि रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुरे रपाई करे न दर्शन। जब स्कूल में पढ़ते थे तो रेगुलर हरिदास ठाकुर के पास जाते थे, और उनका उनसे सुनते थे कृष्ण कथा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे। हरिदास कृपा करे तहार ऊपरे, सही कृपा कारण है ल चैतन्य पाई बारे। कि केवल हरिदास ठाकुर की विशेष कृपा हुई बचपन में रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर, और इसी कृपा के कारण उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति जगन्नाथपुरी में की। तो इस प्रकार से बचपन से ही इनका जो आकर्षण है श्री चैतन्य देव के प्रति था, और जब इनका ये हर समय भागते थे घर से, तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, और उसके बाद जब शांतिपुर में आए थे तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने गए, और उन्होंने कहा कि मुझे अभी सारी चीजें, घर और ये सब विषय जीवन है, घर गृहस्थी इनको त्यागना है, ये निरस जीवन है, इसको छोड़ना है। तो महाप्रभु ने कहा, प्रभुरा शिक्षा देते हो निज घरे जाय, मरकट वैराग्य छाड़ी हैला विषय प्राय। तो महाप्रभु ने कहा अभी समय नहीं आया है, अब अपना मरकट वैराग्य मग दिखाओ, मतलब बंदर का जो वैराग्य है, बंदर नग्न रहता है, कोई वस्त्र धारण नहीं करता, लेकिन बंदर क्या करता है, रोज जो अपनी वाइफ है वो चेंज करता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से मरकट वैराग्य मत धारण करो, एक समय आएगा तो महाप्रभु ने कहा कि जाओ वापस जाओ घर और विषय व्यक्ति के समान रहो। विषय व्यक्ति मीन्स कैसे, भीतरे वैराग्य बाहिरे करे सर्व कर्म देखिया माता पिता आनंदित मन, कि भीतरे वैराग्य हृदय में आंतरे निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार। चैतन्य महाप्रभु को देखिए, हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा रखो और बाह्य लोगों के सामने नॉर्मली व्यवहार करो, ये भक्त का लक्षण है। भक्त का लक्षण क्या है, कृष्णदास कविराज कहते कि उत्तम हैया अपना के माने आधम, वो उन्नत होता है लेकिन अपने आपको छोटा समझता है। और जब क्योंकि या तो जो छोटे भक्त होते हैं आदम हैया अपना के माने उत्तम, तो ये चेंज दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने भी एक भक्त को डांटा था। प्रभुपाद जब वृंदावन में अपने प्रभुपाद हाउस में थे रूम में, तो प्रभुपाद रेगुलर बाहर निकलते थे और उस समय एक भक्त था, नया नया ज्वाइन किया था उन्होंने मूवमेंट, जैसे प्रभुपाद रूम से बाहर निकलते थे तुरंत अपनी भगवद गीता खोलता था और जोर जोर से यदा यदा ही धर्म श्ला निर्भवती भारत, मतलब श्लोकों की झड़ी लगा देता था, श्लोक का उच्चारण करते रहता था संस्कृत। तो प्रभुपाद ने देखा, एक दिन दो दिन तीन दिन कई दिन देखा, वैसे नहीं करता था लेकिन प्रभुपाद जैसे निकलेंगे प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद रूम आप वृंदावन देखते हैं तो साइड में छोटा सा गार्डन, वहां खड़ा होकर बोलते रहता था। तो आति भक्ति चोरीला लक्षण, तो वो जैसे प्रभुपाद ने गौर किया कि हाँ, तो प्रभुपाद निकले एक दिन बाहर अपने स्टिक लेकर और प्रभुपाद ने कहा बंद करो, ये डांट लगाई सबके सामने, स्टॉप दिस, कहा कि बंद करो, ज्यादा अच्छा है कि देखो मेरे रूम के सामने भी बारिश हुई और पानी गिरा हुआ है, झाड़ू ले लो और इसकी सफाई करो, उससे तुम्हारा हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद सिखाते हैं कि जो भक्त है उत्तम हैया अपना के माने अधम, कि उत्तम होकर भी अपने आप को एक छोटा समझता है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे रघुनाथ, अभी तो समय आया नहीं है, अभी तुम चले जाओ घर और एक विषय व्यक्ति के समान घर में रहो। और चैतन्य महाप्रभु फिर जो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में एक विषय व्यक्ति के समान रहते थे और बार बार उनकी इच्छा और बलवती होती थी, महाप्रभु से और विरह या सेपरेशन का अनुभव करते थे और वो भागते थे कि मुझे जगन्नाथपुरी में जाना है चैतन्य महाप्रभु के पास। तो प्रभुपाद के बारे में भी आता है, प्रभुपाद जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो रोज हावड़ा रेलवे स्टेशन जाते थे और देखते थे कि जगन्नाथपुरी और वृंदावन जाने के लिए कौन सी ट्रेन है और उनका किराया क्या है। तो ये है, प्रभुपाद कहते कि ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय मैं कृष्ण को भूला हूं। तो इस प्रकार से महान वैष्णव है ऐसे भक्त। और प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो कहते हैं ना मुझ में भक्ति है ना मुझ में ज्ञान है, लेकिन मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा गया है। तो इस प्रकार से हम सीखते हैं इन वैष्णवों के गुणों से, इनके कार्यकलापों से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रोज उठते थे और महाप्रभु को एक साल मिलने के बाद और भागना सोचते थे कि कैसे जाओ भागो में, तो निकलते थे तो उनके जो बॉडी गार्ड्स हैं वो पकड़ के ले आते थे वापस कि नहीं घर में रहो। तो उनके माता कहते थे कि इसका बांध के रखो, तो उनके पिता कहते हैं कि इनको तो और किस चीज से बांधना है, कहते कि ऑलरेडी मैंने इसको बांध के रखा है, इंद्र सम ऐश्वर्य श्री अप्सरा सम ये सब बांधिते नारी केल जारमान, कि कहते रघुनाथ दास गोस्वामी के पास धन संपदा कैसी है, इंद्र के समान ऐश्वर्य है और उनकी सुंदर स्त्री है पत्नी, क्योंकि इस जगत में इजीली बांधा जाता है। जैसे उस दिन क्लास में कोई कह रहे थे कि लड़का जब सुनता नहीं है तो माता पिता को चिंता होती है कि बड़ा अभी मेरी बात नहीं सुनता है और घर में समय नहीं देता है अपना, तो कहते ठीक है अभी ये सुधर जाएगा, इसके गले में वो डाल देते हैं रस्सी डालते हैं, तो कहते इसकी शादी कर दो अपने आप बन जाएगा। कहते कि घर ऐसा स्थान है वो एक जेल है जेल नहीं है लेकिन ऐसा जेल है, एक प्रकार से ग्रह में भी जब रहता है तो उसको जेल कहते हैं, कि ऐसा जेल है जिसको कोई लॉक नहीं है, कोई जेलर नहीं है, लेकिन व्यक्ति पूरे दिन बाहर जाता है और फिर से जेल में बंधने के लिए अपने आप आ जाता है, कहते कि डालो रस्सी मेरे गले में तो शास्त्र इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ ऐसा नहीं था, उनके गोवर्धन मजुमदार ने अपनी वाइफ को कहा, उनकी माँ को, कि देखो इसको बांधना क्या, अभी मैं किस श्रृंखला से बांधो, कौन सी चैन से बांधो इसको, तो दो, क्योंकि संसार में दो चीज से व्यक्ति बनता है, एक है स्त्री और एक है धन। कहते क्या इंद्र के समान इसके पास ऐश्वर्य है और अप्सरा के समान स्त्री है, फिर भी यह नहीं बंध रहा है, क्यों? क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है, और इसलिए उनके पिता कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो जाता है, चैतन्य चंद्र कृपा हया छे जहारे, और हर कोई चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल नहीं होता, कहते कि चैतन्य चंद्र कृपा हया छे जहारे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा इस रघुनाथ के ऊपर हुई है। चैतन्य चंद्र बातुल के राखिते पारे, कि चैतन्य महाप्रभु के लिए जो पागल हुआ है, कौन व्यक्ति है जिसको बांध के रखेगा, इस संसार में कोई नहीं है, वो भागने लगे। तो एक दिन ऐसे ही समय आया, रात के समय जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो सबके आंखों में धोखा देकर, रात के समय, चैतन्य चरितामृत में बहुत अधिक वर्णन है, रात के समय अकेले भाग जाते हैं और तीन दिन तक कुछ नहीं खाते वो, केवल दौड़ते हैं, दौड़ते रहते हैं और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं अपने सामने, कृष्ण को, और मिलने की उत्कंठ इच्छा उनके हृदय में होती है। तो जैसे जाते हैं तो उस समय वो जगन्नाथपुरी में सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं, और तब तक घर में जब सब लोग देखने लगे कि अरे रघुनाथ कहाँ गया, तो जैसे कि भक्तों के साथ भी होता है, जब कोई इस्कॉन में आने लगता है यूथ फोरम में, तो वो भी धीरे धीरे भक्तों के संग में उसके ऊपर भी कृपा होने लगती है, बड़े बाल होते फिर छोटे होने लगते हैं, तिलक आने लगता है यहाँ, फिर शिखा भी आती है, वस्त्र में चेंज आता है, और जब वो घर में जाता है तो माता पिता कहते कि क्या हो गया, बहुत खोया खोया रहता है मेरा जो बेटा है, पहले जैसे नहीं रहा, या अभी पूरा परिवर्तन आ गया है। तो इस प्रकार से ये क्या है, महाप्रभु की कृपा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी गए तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ गंभीरा में बैठे थे, और उसी समय दौड़ते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी आए, और अंगने ते दूरे रही करे न प्रणिपात, मुकुंद दत्त कहे यही आयला रघुनाथ। तो मुकुंद दत्त कहते कि देखिए, दंडवत किया जाते चैतन्य महाप्रभु को कि देखिए रघुनाथ आ गया है। हाँ, तो प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने आलिंगन किया रघुनाथ दास गोस्वामी का, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर वहां जो भी भक्त थे, स्वरूप दामोदर वगैरह, उनको प्रणाम किया। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी अंत समय में चैतन्य महाप्रभु से मिले, मतलब बहुत लंबे समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे रघुनाथ, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये सबके ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं होती है, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा की है कि भौतिक जो जीवन है, भौतिक जीवन का जो गड्ढा है उसमें से कृष्ण ने निकाला है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कृष्ण नाही जाने, आमी कृष्ण नाही जाने, कि कहते कि मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं जानता हूं कि आपने मुझे इस भौतिक भोग का जो सागर है उससे आपने मुझे निकाला है, मैं तो कीड़े के समान हूं जो मल में रहता है, तो लेकिन मैं कृष्ण को नहीं जानता, ये मल जैसा स्थान है उसमें से आपने मुझे निकाला है, और मैं शुद्ध, आपने मुझे एक वैष्णव के समान बनाया है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वीकार करते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके अंडर रखते हैं, किसके? स्वरूप दामोदर के अंडर। कहते हैं कि हे रघुनाथ, यही रघुनाथ आमी संपिनु तुम्हारे पुत्र भृत्य रूपे तुम्हें कर अंगीकारे। स्वरूप दामोदर को कहते हैं कि इस रघुनाथ को मैं तुम्हारे हवाले समर्पित कर रहा हूं और तुम इनकी देखभाल करो। तो तब से रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूपेरा रघु कह के जाना जाता था, क्योंकि जगन्नाथपुरी में उस समय तीन रघु थे। हाँ, एक रघुनाथ वैद्य थे, एक रघुनाथ भट्ट थे और एक रघुनाथ दास थे। तो फिर ये तीन रघु में कैसे जाने? तो जब भी रघुनाथ दास की बात आती थी तो सब कहते थे स्वरूपेरा रघु। तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर के अंडर वो रहे और स्वरूप दामोदर से उन्होंने शिक्षा स्वीकार की और जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना जो दिव्य वैराग्य का कार्यकलाप है, दिव्य जो वैराग्य है वो उन्होंने प्रकट किया। तो स्वरूप दामोदर के साथ रहकर रोज वो जगन्नाथपुरी में सिंहद्वार में भिक्षा मांगते थे, बल्कि धनवान के पुत्र थे और वहां जाके जस्ट कुछ जो फूड है, जगन्नाथ जी का प्रसाद है, राइस वगैरह मांगते थे और वही खाते थे मांगकर। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में काफी वर्णन किया है उनके दिव्य लीलाओं का, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन इस प्रकार से उनका वैराग्य देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर एक दिन और चैतन्य महाप्रभु रोज पूछते थे कि स्वरूप दामोदर के इनके बारे में, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कि वो क्या क्या कर रहा है। तो गोविंद रेगुलर अपडेट करता था जो इन्फॉर्मेशन है उनको, चैतन्य महाप्रभु को। कहते कि अभी उन्होंने सिंह द्वार में मंदिर का जो द्वार है जैसे हमारे, वहां जो भी आते जाते थे उनसे कुछ प्रसाद मांगते थे। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी है उनको खुद ही लगने लगा कि ये तो वेश्या का कार्य है, देखता रहू कौन आ रहा है। जैसे वेश्या वेट करती है कि कौन आ रहा है व्यक्ति मुझे संतुष्ट करने के लिए, कौन धन देने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो स्थान छोड़ते हैं और फिर जो लंगर जहां होती थी वहां खाते हैं। तो लेकिन उन्होंने भी देखा कि इसमें तो केवल भजन तो हो ही नहीं रहा है, केवल उसी का स्मरण हो रहा है। आज कहां लंगर है, कहां भंडारा है, कौन सी जगह फिस्ट है, कौन फिस्ट दे रहा है, केवल इसी का स्मरण हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं है, फिर उन्होंने वो स्थान भी छोड़ दिया। और फिर वो क्या करने लगे कि जगन्नाथपुरी में एक आनंद बाजार है, जगन्नाथ जी का सारा प्रसाद वहां सेल करते हैं। और जब वो प्रसाद बच जाता है, राइस दाल सब्जी और जो वैरायटीज प्रसाद होता है, तो वो जो शॉपकीपर्स हैं वो फेंक देते हैं और जो फिर गव्वे हैं गाय हैं वो आके खाती हैं सड़ा हुआ राइस। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जाते थे, वो राइस लेते थे और उसको धोते थे और सुखा कर वो खाते थे, नमक वगैरह लगा के, और उसी में अपना जीवन निर्वाह करते थे और हर समय भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो एक दिन उनके हृदय में विचार आया कि बहुत दिन हो गए हैं। फिर उन्होंने जाके जिज्ञासा की, आराधिन रघुनाथ स्वरूप चरणे आपनार कृत्य लागी कैल निवेदन है। तो एक दिन स्वरूप दामोदर के पास गए और कहा, निवेदन किया कि लागी छाड़ा इला घर ना जाने उद्देश्य। स्वरूप दामोदर के पास गए और कहा कि मैंने तो बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल कुछ दिन हो गए हैं, कुछ महीने हो गए हैं, मैंने तो घर छोड़ के आया हूं कि मोरा कर्तव्य प्रभु कर उपदेश, लेकिन अभी तक मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, किस लिए मैंने घर छोड़ा है। भूल जाते हैं, हम भी कई बार भूल जाते हैं, लेकिन फिर भक्त याद दिलाते हैं, शास्त्र याद दिलाते हैं। तो उसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर को अप्रोच किया और कहा कि बताइए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास ले जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो नहीं जानता, मुझसे ज्यादा कौन जानता है, स्वरूप दामोदर जानता है, तुम उनसे सीखो। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दो उनको संदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं संक्षेप में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भाल ना खाइबे आर भाल ना परिबे। कहते कि ज्यादा अच्छा मत खाओ फिस्ट, और भाल ना परिबे, अच्छे अच्छे वस्त्र मत धारण करो, और ग्राम्य कथा ना सुनिबे, जो विषयी व्यक्तियों की बातें हैं, जिन बातों में कृष्ण नहीं है सब्जेक्ट, ऐसी बातों को मत सुनो, और ऐसी बातें करो भी मत जिन बातों में कृष्ण या भगवान जो सेंटर नहीं है। और कहा कि अमानी मानद हया कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मान से करीबे, कि विनम्र होकर भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते रहो और राधा कृष्ण की सेवा करो। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के इन शिक्षाओं का पालन करते थे। और आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो शालिग्राम शिला है, जो एक सन्यासी से उनको प्राप्त हुई थी, जो गिरिराज शिला है, वो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी, और एक गुंजा माला भी रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी सेवा करते थे। तो जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर अप्रकट हुए तो उनको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने कहा भी मुझे वृंदावन जाना है, और वृंदावन जाकर मैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ूंगा और क्या करूंगा, वहां से कूद लगाकर आत्महत्या करूंगा। तो रोते हुए वृंदावन आए, लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनको समझाया और कहा कि आप राधा कुंड में निवास करिए और वहां चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं को कहिए। श्री राधे पर सरते की गौरनिताय की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो हम अब एक मिनट लेंगे। और तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने राधा कुंड के तट पर निवास करना शुरू किया, और वहां निवास करके वो अपना 22.5 घंटे कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में वो बिताते थे। ऐसा वर्णन आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी रोज 1,00,000 मतलब 64 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र की मालाओं का जाप करते थे, और 2,000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे, और 3 बार राधा कुंड में स्नान करते थे, और 1,000 कृष्ण को प्रणाम करते थे, और केवल 90 मिनट्स वो सोते थे। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना जीवन व्यतीत किया। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इस प्रकार से हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। कि आप उनके बारे में, उनके साधना के बारे में सुनोगे तो आप अचंभित हो जाओगे या आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने दिव्य कार्यकलाप किए, और उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, उनमें से उनके 3 ग्रंथ बहुत अधिक फेमस थे। स्तवावली के ही 2 भाग है, मन शिक्षा और विलाप कुसुमांजलि, मुक्ता चरित, दान के लिए चिंतामणि। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना जो बचा हुआ जीवन है राधा कृष्ण की सेवा में राधा कुंड में बिताया, और फिर वह अपने दिव्य जो नित्य लीला है उसमें प्रविष्ट हुए हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के श्रील प्रभुपाद के निदाय गौर प्रेमानंदे।